તારીખ 31/9/1993 શ્રી સમયસાર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 27 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है. कठिन है वो न्याय से आदर्श से युक्ति से समझ में आता है, लेकिन जो हमारा अनुभव तक हम उसको तलाश करके इस उद्देश्य से उनको देखेंगे नहीं, अनुभव करेंगे नहीं, तो उसकी जो प्रतीति है उत्पन्न नहीं होगी। जानकारी के साथ साथ प्रतीति होनी जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि हमारी उल्टी प्रतीति चालू है, ज्ञान में राग होता है ऐसी प्रतीति चालू है। अब ये कहेंगे कैसा तो विचार ही नहीं किया हमने, प्रतीति के कहां से आ गई, कैसे हो गई ये, लेकिन हम लोगों को देख लीजिए कि राग मेरे में हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान में हुआ। वास्तव में तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा ने राग को राग रूप पिंड जानना चाहिए, तभी तो फिर ज्ञान होगा। और भिन्न है इसलिए भिन्न जानना चाहिए या अनुभव करना चाहिए। ऐसा अनुभव करने के बदले मेरा हो रहा है, मेरे में हो रहा है, मैंने किया, मैंने भोगा, इस सब प्रकार का जो विपरीत अनुभव होता है, इस विपरीत अनुभव को आचार्य महाराज अपने शब्दों में ऐसा कहते हैं, कर्ता कर्म अधिकार जो आगे चल गया, कि ये ज्ञान का अज्ञानत्व है। क्या है ये ज्ञान का अज्ञानत्व है? ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का अनुभव करना, मात्र ज्ञान का अनुभव करना, वो ज्ञान का ज्ञानत्व है। और ज्ञान में अन्य द्रव्य भाव का अनुभव करना ज्ञान का अज्ञानत्व है। उसको क्या ज्ञान कहे, उसको व्यक्तिगत ज्ञान कहे, उसके साथ प्रतीति ऐसी रहती होने से जैसा अनुभव ऐसी प्रतीति है, तो उसको मिथ्या प्रतीति यानी मिथ्या श्रद्धा भी कहने में आती है। तो सभी प्रकार के विपर्याप को मिटाने के लिए तीसरी गाथा में क्या कहते हैं, क्या अर्थ है इसका, देखो शब्दार्थ चल रहा है अभी। ऐसा अविपरीत ज्ञान, कैसा, कि ज्ञान में क्रोधाधिक रागाधिक नहीं, रागाधिक में उपयोग नहीं, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव को होता है, जिस जीव को होता है, तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अति अन्य किसी भी भाव को नहीं करता। क्या कहा, कि ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव को होता है, वहां ज्ञान मैंने जानकारी मात्र नहीं लेना, जानकारी हो जाती है शास्त्र पढ़ने से, जानकारी हो जाती है, कभी ऐसी भूल नहीं करना चाहिए कि जानकारी हुई वही ज्ञान हो गया। पहले हम नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, अभी समझने लगे, जानने लगे, इसलिए हमारा हमको ज्ञान हो गया, ऐसे भूल कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। गोपाल गुरु तो इस शब्द में कहते हैं, कृपाल गुरु में श्रीपद राजचंद्र को भगवान की भाषा में उत्तम शब्द में संबोधित करते हैं। शास्त्र ज्ञान से निवेदा नहीं, अनुभव ज्ञान से निवेदा है। क्या कहते हैं, शास्त्र ज्ञान से धारणा हो जाती है, और पहले ऐसे धारणा नहीं होने से मैं समझता हूं ऐसा ही अभिनिवेश परलक्ष्य ज्ञान में प्राय हो जाता है, तो उससे निवेदा नहीं आता, लेकिन अनुभव ज्ञान से निवेदा आता है। यहाँ कहते हैं कि ऐसा विपरीत अनुभव जब होता है, तो उस जीव को फिर जीव नहीं कहा, आचार्य महाराज ने अपने शब्द बदल दिए, तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा है। क्या क्या कह दिया, तो ऐसा इतना जबरदस्त शब्द रख दिया कि वो उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा है, वो जीव नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, उसका अज्ञान मिट गया।
ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का अनुभव करने वाले को उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा बोल दिया, क्यों? क्योंकि वह अपने आप को ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं एक ज्ञान स्वरूप की आत्मा हूं, सिवा कुछ नहीं हूं। ये राजा जी अपेक्षा से मेरे में होते हुए भी मेरे लिए क्या अपेक्षा से मैंने क्या कि जीव का चारित्र गुण का विभाव पर्याय है, इसलिए इसको किसी अपेक्षा से, प्रमाण की अपेक्षा से जीव का कभी शास्त्रकार भी कहते हैं और जगत में को मानते हैं अज्ञानी तो उस रूप ही अपने को मानते हैं। तो ऐसा अविपरीत ज्ञान होने से वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा में हूं ऐसा अनुभव करने लगता है, तो उसको अपना ज्ञानोपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को मैं करता हूं ऐसा अनुभव नहीं होता। मैं करता हूं ऐसा अनुभव नहीं होता तो कहने की आवश्यकता नहीं रही कि मैं भोगता हूं ऐसा भी अनुभव नहीं रहता। क्यों? कि जहां कर्तापने का अनुभव है वहीं भोक्तापने का अनुभव होता है, जहां भोक्तापने का अनुभव होता है वहीं कर्तापने का अनुभव होता है। यही मिथ्यात्व का स्वरूप है कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का यही स्वरूप है कि राग का कर्ता भोक्ता मानना एकत्व बुद्धि से, आधार बुद्धि से तो इसको छुड़ाया है। क्या ज्ञान ज्ञान में शुद्धोपयोग रूप परिणाम में वो उपयोग का आचरण नहीं है क्या? क्या ये आत्मा का आचरण नहीं है क्या? क्या ये शुद्धाचरण नहीं है क्या? और ये स्वरूप आचरण चारित्र नहीं है क्या? क्या शब्द कहेंगे उसको? उसको स्वरूप आचरण चारित्र शास्त्र में कहते हैं। जाति इसकी कौन सी है? यथाख्यात चारित्र की जाति है। ये शुद्धोपयोग हुआ इसकी जाति केवल ज्ञान की जाति है। अरे वहां केवल ज्ञान की लब्धि उत्पन्न हो जाती है। शुद्धोपयोग होता है तो केवल ज्ञान की लब्धि उत्पन्न हो जाती है। निमेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं कि जो अनंत प्रकार के कर्म है ना, इसमें दर्शन मोह है वो सबका राजा है और तो सब इनके सैन्य है। तो तुमने राजा को मारा है, सम्यक दृष्टि ने क्या किया है? राजा को मार दिया। वहां ऐसी गिनती करना जरूरी नहीं है कि अभी तीन चौकड़ी को मार दिया, एक ही चौकड़ी गई, 25% ही चारित्र में शुद्धि हुई है, 75% तो अशुद्धि रही। ये दृष्टिकोण इसके महत्व को समझने नहीं देगा। ये करणानुयोग का एक विभाग है, जानने का विषय, जानकारी कर लेना, उससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। इसलिए वहां राजा को जीत लिया, सैन्य स्वयं ही सरेंडर हो जाएगा, उस सैन्य की कोई गुंजाइश नहीं रही तो वो जीव राजा को फिर हरा दे, ऐसी कोई परिस्थिति होने वाली नहीं है। और देखिए इसी ग्रंथ की 143 नंबर की गाथा निकाल लिया, अब ये भी हमारे भावनगर में तीन का स्वाध्याय चल गया और दंशन मूल्य ढंगों में भी हमने उसका आधार दिया है कि समय दृष्टि की महिमा ऊपर के गुणस्थान में विराजमान आचार्य कितनी करते हैं। क्या मोक्ष तो करें उसमें तो कोई कहने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन खुद आचार्य महाराज कितनी करते हैं,
पढ़िया कि जो
पक्षांतिक्रांत होता है उसको सकल समस्त नए पक्ष के धर्म से दूर हुए होने हैं, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ आखिर तीन पंक्ति यहाँ लिखा था कि टीका के गुहात्मा क्या पक्षांतिक्रांत होकर के शुद्धों की जिसको प्राप्त हुआ उपलब्ध हुआ उसकी बात करते हैं। गुहात्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर मैंने निर्विकल्प हुआ उपयोग में पहला शब्द क्या लिया निर्विकल्प होने से परमात्मा शब्द लिया है शुद्धात्मा ही लिया वहां क्या 183 में तो शुद्धात्मा कहा लेकिन यहां तो परमात्मा कहा। आचार्य महाराज ने इतनी महिमा गाई इसकी कि शाबाश धन्यवाद तुझे हम देते हैं कि तुम हमारी जाति में ज्ञाति में आ गया हमारी पंक्ति में तू बैठ गया भले ही हमारी समृद्धि अधिक है आचार्य महाराज की समृद्धि अधिक है लेकिन तुम हमारी पंक्ति में आनंद आनंदमत का भोजन करने वाला है एक ही पंक्ति में हमारी पंक्ति में बैठा हुआ हम देखते हैं तो उसको परमात्मा बोला ज्ञानात्मा बोला प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति अभूति मात्र समय सार इतने शब्द विशेषण लगा दिए इतना भाव आ गया है आचार्य महाराज को अमृत चंद्र आचार्य महाराज को। जब अमृत चंद्र आचार्य महाराज को निर्विकल्प शुद्ध योग वाले के प्रति कितना भाव आ जाता है तो मनुष्य को कितना आना चाहिए बस हिसाब लगा देना बनिए लोग तो हिसाब लगाने में अच्छे एक्सपर्ट होते हैं तो हिसाब लगा देना चाहिए। गोमट सार नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का एक कर्णानुयोग का महान ग्रंथ है दिगंबर आचार्यों के साहित्य में और इसकी टीका पंडित प्रवर तोरण मंजी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्र का नाम से किया है। उसमें वो लिखते हैं कि जो कोई जीव सम्यक दर्शन के पहले के कुछ समय में करण लब्धि में आता है काय में आता है करण लब्धि में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ स्वाद के समय में होने वाला है करण लब्धि के परिणाम पूरे होते ही उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको वहां जीन कहा क्या कहा तोरणमल जी साहब ने उसको जीन बोला है वो तो क्या है उनकी पद्धति वो करके समझाने की है वो खुद ही प्रश्न उठा लेते हैं कि इसको जीन क्यों कहते हो जीन तो हम तेरहवें गुणस्थान में जो पहुंचते हैं उसको जीन कहते हैं तो क्या नहीं उसने जीनत्व को प्राप्त किया है इसलिए हम उसको जीन कहते हैं ऐसा उत्तर दिया है। देखिए ज्ञानियों ने आचार्यों ने कितनी महिमा की है तो महिमा करने लायक है आदर करने लायक है सत्कार करने लायक है और भक्ति करने लायक है वंदन करने लायक है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रा ही मोक्ष मार्ग होने से कि मोक्ष मार्ग में धर्म में तीनों की एकता होने से भले ही जगन्य मात्रा में हो लेकिन वो चारित्र संपन्न है चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ चारित्र का जहाँ अधिकार चलता है इसकी मुख्यता की चर्चा जिस शास्त्रों में चलती है वहां तो उसकी गिनती नहीं करते लेकिन ऐसा सर्वथा लेना मुमुक्षु के लिए उचित नहीं है यानी इस पर वजन दे देना ये भी मुमुक्षु के लिए उचित नहीं है ऐसा संकेत आचार्य महाराज ने समय सार शास्त्र में खुद ने महिमा करके ये संकेत कर दिया है तो स्वयं ने महिमा कर दी इसी मुमुक्षु को तो महिमा करनी है ही।
महिमा में मर्यादा नहीं होनी चाहिए
कल रात्रि के स्वाध्याय में ये बात चली थी
गुणस्थान का जो तफावत है, अंतर है, वो इन दोनों में है क्या? हमारा संबंध इन दोनों के बीच में क्या तफावत है, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन हमको तिरने में वो निमित्त है कि नहीं है, ये है। ये प्रश्न आप अवश्य कर सकते हैं कि तिरने में निमित्त है, इसमें इसका ज्यादा निमित्त हो सकता है, इसका कम निमित्त हो सकता है, इसलिए इसकी महिमा कम करो, इसकी ज्यादा करो, तो वो हिसाब झूठा है, खोटा हिसाब है। निमित्त तो एक सा है, निमित्त उत्तम में एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है। ये क्रांतिकारी गाथा है आत्मसिद्धि शास्त्र में, इसीलिए तो जब ये शास्त्र लिखा गया तो वो सबों को पढ़ने को नहीं मिले। इसकी आज्ञा के बिना किसी को नहीं देना, कृपा देव के बिना आज्ञा कोई को पढ़ने का नहीं देना, उसकी नकल भी करना उस पर कंट्रोल रखा गया था। क्या तो उसमें ऐसी गाथा है कि प्रत्यक्ष सदगुरु रम नहीं परोक्ष जिन उपकार, तो एक सदमस्त है सदगुरु, सदमस्त है और जिन है वो अकेले है, तो बराबर को नहीं उस क्या इसके सम नहीं, बराबर भी नहीं। ऐसे लक्ष्य हुए बिना दिन आत्मविकार क्यों नहीं? अगर तुमको केलिका के युग चला गया 2500 साल हो गए, अब जो छदमस्त सजीवन मूर्ति रह गई उसमें दो ही विभाग है, एक बावलिंगी लग्न दिगंबर संत होते हैं, मृगन पर एक सभी दृष्टि प्राप्त चतुर्थ्या पंचम गुणस्थान मूर्ति होते हैं, दोनों सजीवन मूर्ति हैं, दोनों में करने का निमित्तत्व होता है। जिसकी प्रत्यक्षता है इसके बराबर परोक्ष कोई नहीं है। जब जिनेन्द्र नहीं है तो फिर ऊपर के गुणस्थान वाले का हिसाब करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा समझ या सूझ नहीं आई तो उसका कौन सा क्लास है कि उसको आत्महित का विचार भी नहीं आया है, इस वर्ग में हम उसको रख देते हैं, ऐसा कहते हैं आत्मकल्याण का उसको विचार ही नहीं आया है। क्यों? कि डूबने वाला कभी ये नहीं देखता, जो डूबता है उसी वक्त वो कभी नहीं देखता कि अगर मुझे ये छोटा सा पतिया छुपा हुआ है ये मिल गया तो मुझे नहीं तिरना है, स्टीमर आ गई तो बैठूंगा, मुझे तो स्टीमर से तिरना है, भले ही मैं मर जाऊं डूब जाऊं, ऐसा कभी डूबने वाले को होता ही नहीं। अगर होता है तो पता चलना कि वो डूब रहा है उसका भी उसको पता नहीं है, तिरने का हो गया। देखिए पानी में अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि डूबने की परिस्थिति मरने की परिस्थिति हो जाए, तो हमारे गुजरात में तो ये कहावत है कि डूब तो मानस तरणा ने पकड़े, माटिया ने नहीं, तरणा मैंने तिरका, तरणा को पकड़ेगा, ये इनकी हालत है। तो ऐसा कोई कहेंगे सम्य दृष्टि है क्या है, तो कुछ रहते चतुर्थ स्थान है, तुमको यही पता नहीं है कि मैं डूब रहा हूँ अभी, क्या कहते हैं, तुमको यही पता नहीं है कि मैं भव समुद्र में कि मध्य में डूब रहा हूँ, उसका पता तुझे नहीं है, तो फिर मैं कभी क्या तुझे कहा से आएगा? ये कहते हैं यहाँ पर विपरीत ज्ञान है, ऐसा होता है। गुरुदेव कहते थे कि एक भी विपर्यास रहता है वहां तक समय दर्शन नहीं होता, क्या था? एक भी विपर्यास रहता है तो इसमें क्रम विपर्यास भी आ गया, यहाँ तो क्रम का क्रम की सूचना है कि वेद ज्ञान कैसे करना, के पहले राजा जी से प्रसाद जी से वेद ज्ञान करना, वेद ज्ञान करना मैंने रात में ज्ञान स्वरूपी आत्मा राग से और देहादि से भिन्न हो इतना विचार विकल्प करना तो वेद ज्ञान का स्वरूप नहीं है। समझ में बात आती है तो क्या वेद ज्ञान से संवर के अनुभव की प्राप्ति है तो वेद ज्ञान करने के लिए ऐसा विचार करने लगे, ऐसे किसी ग्रंथ पढ़ने लगे बार बार समय सार पढ़े और बार बार जो पढ़े इसका चिंतन करे, उसी का नाम वेद ज्ञान नहीं है, खचित नहीं है, अक्षर नहीं है, इसी का नाम वेद ज्ञान। मात्र विकल्प है क्या? यही कहेंगे आचार्य महाराज, ऋषि का स्वाध्याय करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जो ऐसा विकल्प भेद ज्ञान नहीं, ऐसा विचार भेद ज्ञान नहीं, ऐसा चिंतन मनन भेद ज्ञान नहीं, तो फिर भेद ज्ञान क्या है? ये तो बात कहेंगे आचार्य महाराज, टीका में उसको खोलेंगे। आचार्य महाराज ने टीका में ये बात खोली है कि तुम किसका अवलंबन से वेद ज्ञान करते हो। बहुत साइंटिफिक सिस्टम से उन्होंने टीका लिखी है, वैज्ञानिक तौर से बात लिखी गई है। वास्तव में देखिए टीका की पहली पंक्ति क्या है, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये पदार्थ विज्ञान चल रहा है। जैसे कोई साइंस का प्रोफेसर हो पदार्थ विज्ञान की बातें करते हैं, वैसे ही आचार्य महाराज यहां से शुरू करते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये वस्तु स्थिति की एक वास्तविकता है, यानी हम एक आत्मा है, आत्मा रूप एक वस्तु है, एक जीव वस्तु है हम, तो हमारे स्वरूप के अलावा किसी भी दूसरी चीज दूसरी वस्तु हमारी नहीं है। जहां भी अपनत्व होता है देख लेना, वहां विचार वहां आप विचार नहीं करते, ये पैसा मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, इसमें विचार नहीं करते, अनुभव करते आप। ऐसा सिर्फ विचार नहीं करते, ऐसा आप अनुभव कर रहे हो कि नहीं, आप आपके अनुभव को तलाश करके ऑब्जर्व करके समझ लेना कि जब आप अनुभव विचार करते हैं और इसका इस अनुभव का आने के लिए निवृत्त करने के लिए अभाव करने के लिए उल्टा अनुभव चाहिए, कोई तलवार मारने को आएगा इसके सामने आप लकड़ी लेंगे या तलवार लेंगे, क्या लेंगे? लकड़ी के सामने लकड़ी लोग बराबर है, लेकिन तलवार के सामने लकड़ी का काम आएगी, पिस्तौल के सामने लकड़ी का काम आएगी? आप तो उल्टा अनुभव कर रहे हैं कि दे मेरा है, इसमें असफलता होती है तो मुझे भी ये अनुभव के सामने उल्टा अनुभव चाहिए या सुल्टा विकल्प चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा साधन होना है? व्यापार में भी आपको श्रद्धा करनी होती है, करते कि नहीं? अपने बराबरी के जो व्यापारी है उसके सामने श्रद्धा करते हैं तो कैसे करते हैं कि इसका नशा छोड़ो, इसके बढ़िया अपना इसके जितनी पूंजी लगाए उतनी कम से कम अपने लगाओ, इसके बराबरी करो मेरे या वो अच्छे अच्छे अपनी दुकान जमा करने से तुम खुद पाए फिर उसके सामने बैठ कर श्रद्धा कर पाएंगे क्या? फुटपाई पर धंधा वही नहीं चलता है, इसी का ही चलता है, क्या उसकी बराबरी कर सकता है क्यों? तो वो जो बैठा है अंदर में वो समझता है कि फुटपाई वाला जहां गिरा अंदर आने वाला नहीं है, अंदर आने वाला फुटपाई से लेने वाला नहीं है, तो उसको कोई पीड़ा नहीं होती, भले फुटपाई पर वही चीज वो बेचने वाला हो और कम भाव में बेचने वाला हो, लेकिन जो ग्राहक शोरूम में आकर के लेता है वो फुटपाथ पर से नहीं लेता, वहां बराबरी करते हैं अपन, हर जगह वहां बराबर बराबरी करते, पिस्तौल के सामने पिस्तौल रखते हैं, तलवार के सामने तलवार रखते हैं, इधर विपरीत अनुभव के सामने हम विकल्प को चलाते हैं, क्या करते हैं? अनुभव करते विपरीत,
सामने साधन बनाते विकल्प को, विचार को, कैसे सफलता मिलेगी बताइए? तो सफलता मिलने की कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती। विपरीत अनुभव के सामने है विपरीत अनुभव ही चल सकता है। किस तरह कोई साधन कोई व्यस्तन कोई उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं हो सकता, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा विपरीत ज्ञान मैंने अनुभव जो होता है तो उसके सामने अविपरीत अविपरीत अनुभव है वो विपरीत अनुभव को मिटाएगा। वो कैसे अनुभव करना तो आचार्य महाराज प्रयोग की थ्योरी कहते हैं। बात तो जो होती है वो व्याख्या या परिभाषा में ही होती है, यानी कहने में तो थियोरेटिकल परिस्थिति में आना पड़ता है, तो भी उसकी थ्योरी बनानी बतानी पड़ती है। तो कहते हैं कि वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है,
या वस्तु माने भू दे
देंगे नहीं प्राप्त लेना है
वास्तु सुनी राग और ज्ञान की होने की बात होती
है। अच्छा प्रश्न है,
ज्ञान और शारीरिक
नहीं अपना आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। आचार्य महाराज ने बात पर्याय से कही कथा में और टीकाकार आचार्य महाराज वस्तु पर्याय से बात नहीं कह करके यहाँ से वस्तु से क्यों
सुनूंगा
आगे तो कहेंगे, आगे तो वो ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन वस्तु कहने का कारण यही है कि जो पर्याय की चीज है वो तो पर्याय मात्र को वस्तु के रूप में ग्रहण कर लेता है। जैसे राग एक पर्याय है लेकिन अनुभव क्या है कि मैं पूरा रागी हूं, आपके प्लेट में या मकान में चोरी करने को आया था, आपके अनुपस्थिति में आया था, लेकिन आप आगे तो चोर पकड़ा गया। आपकी ऐसा कहेंगे तो चोरी तो इनके पर्याय थी, वो कहां चोर है ऐसा किसी को विचार करती क्या? चोरी के जो भाव थे वो तो इनके पर्याय में थे ना, इनके गुण द्रव्य में तो है नहीं जैन दर्शन के हिसाब से वस्तु विज्ञान के हिसाब से, लेकिन आप उनको चोर कहेंगे, चोरी के पर्याय वाला जीव नहीं कहेंगे, ये चोर है पकड़ो उसको पुलिस को बुलाओ उसको सौंप दो क्योंकि वो चोर है। ऐसे राग होता है तो मैं रागी हूं, क्रोध होता है तो मैं क्रोधी हूं, ऐसा अनुभव करते हैं, वो पर्याय मात्र में अनुभव करते हैं पूरा सफला। तो आचार्य महाराज उसी पद्धति से समय साथ में समझाया है, उनको भगवान ने पर्याय प्रधान द्रव की विविधता करके यहां अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का एक अपनी खास शैली पद्धति को यहाँ रखी है समय सार में। इसका ये समूह है दूसरी गाथा, पहले गाथा तो मांगने की, दूसरी गाथा में जो अपने विशेष रूप करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जीव चरित दर्शन ज्ञान शिक्षित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म कुदगर के प्रदेशों पर समय जीव जाने। तो चरित दर्शन ज्ञान तो पर्याय है, दर्शन ज्ञान चरित्र के वो पर्याय है, उस पर्याय में जो स्थित हुआ है उसको हम स्वसमय कहेंगे। यहां पर हमारी शरीर समझ लेना, और जो कुदगर का अवलंबन लेकर वहां स्थित हुआ है वहां उसके आधार में पड़ा है उसको हम परसमय कहेंगे। शास्त्र में ये बड़ी पद्धति है, पद्धति पद्धति में क्या अंतर है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जो शुद्धात्मा में स्थित है वो स्वसमय है ऐसा नहीं कहा। वैराग्य दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर के शुद्धात्मा में स्थित हुआ उसको हम ससमय कहेंगे, ऐसा नहीं कह करके जो चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो ससमय है ऐसा हम कहेंगे। पर्याय की प्रधानता से हम कह रहे हैं, इसका सबूत है अपनी शैली का, पद्धति का, एक एक बात कहने में बहुत गहराई है। ऐसा नहीं करके ऐसा क्यों कहा, धर्म की प्रधानता से तो ऐसा कहना चाहिए कि धर्म का अवलंबन पर्याय लेते हैं, पर्याय धर्म का अवलंबन कभी नहीं लेते हैं। लेकिन बात यहां से संचालित किया कि जो चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है ऐसे जीव को हम समझते हैं, ऐसे पर्याय प्रधानता से क्यों मानते हैं, क्योंकि सुनने वाला पर्याय प्रधानता में खड़ा है। इसलिए शैली है, सारे समझ सकती है शैली। आखिर मुझे कि सुरतानी शक्ति जो है वो तो जीव का निश्चय स्वरूप है, एक एक शक्ति है तो जीव का निश्चय स्वरूप है। लेकिन 4747 शक्ति की परिभाषा पर्याय प्रधानता कि वो शुद्ध पर्याय रूप कैसे परिणमने वाली शक्ति है, तो पर्याय प्रत्येक शक्ति के परिभाषण क्या दृष्टिकोण आचार्य कि उन्होंने अज्ञानी जीव को सामने रखा है, ज्ञानी को नहीं रखा है, जल दृष्टि वाले को नहीं रखा है, पर्याय दृष्टि वाले को सामने रखा है। और उसकी पर्याय दृष्टि कैसे बिकेगी कि इनकी भाषा में मैं बात करूंगा थोड़ी बिकेगी तो वो समझेगा, अपने मेरी भाषा में वो समझने वाला नहीं है, इसलिए वो सही रखी। इसलिए उन्होंने बहुत सी जगह शैली लिया है, यहां भी ज्ञान और राग की बात लिया है। ज्ञान और राग तो पर्याय है, तो क्या वेद ज्ञान राग और ज्ञान के बीच पर्याय पर्याय के बीच कराने का अभिप्राय है क्या इधर? ऐसी बात अनुभव पद्धति कहां से शुरू होती है, इस विषय की गहराई में अगर हमें जाना हो तो प्रश्न बहुत सुंदर निकाला है नहीं कि इसकी गहराई में हमें जाना
है। सुनने की बहुत दिनों से मिला
जी
दाता को सुनने के लिए बहुत दिनों से हमारे
अपने उन लोगों ने तो छेगा था बताया कि मैंने कहा नहीं
जाना, मुझे सुनने में बहुत अपना था।
तो क्या बताए कि ये विधि का विषय चल रहा है, क्या चल रहा है, विधि काय में होती है, द्रव्य में होती है या पर्याय में होती है?
पर्याय में होती है,
विधि स्वयं पर्याय है। अब पंद्रह का शब्द देखिए, दूसरा सबूत में देता हूं, तीसरा सबूत देता हूं, पंद्रह का शब्द क्या कहते हैं, विधि की गाथा है पंद्रह गाथा। जो यह अवैध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, निर्विकल्प स्वानुभूति हमें दर्शन है, वह निश्चय से समस्त जिनशासन की अनुभूति है। ये सम्यक दृष्टि ही जीन शासन है, समस्त जीन शासन अधूरा नहीं दिया, चतुर्थ गुण स्थान वाला है, इसलिए वो जीन शासन का मार्गन पार्शन ऑफ दी जीन शासन ऐसा नहीं कहा, ये समस्त जीन शासन है ऐसा कहा। यहां भी महिमा किया आचार्य महाराज ने, सहानुभूति संपन्न वाले को समस्त जीन शासन बताया।
थोड़ी एक बात, ये अधिकार
हाँ बहुत, अब दोनों जगह विधि की बात चल रही
है,
अभी एक भाषा है विधि की है,
वहाँ परि वो परिणमन हुआ जीव संवर अधिकार में आया
है। क्या होता है, कभी तत्व नहीं बदलता, कभी सिद्धांत नहीं बदलता, जो बात कहनी है वो दूसरे पहलू से कहेंगे, अनेक पहलू से कहेंगे, लेकिन वो क्यों बात कहेंगे, हम कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, पुत्र है, लेकिन मेरे पिता का ये पौत्र है, क्या मेरा पुत्र है, मेरे पिता का ये पौत्र है तो परिस्थिति नहीं बदलती कहीं, पुत्र और पौत्र दो चीज नहीं है, वो कि एक एक ही आदमी को बताने की बात है। तो जीव को बताओ, एकता पॉइंट को बताओ, स्वभाव को बताओ, विधि को बताओ, तत्व कहीं नहीं बदलता। पर्याय में एक प्रकार के ज्ञान के पर्याय क्या क्या आचार्य महाराज को पता नहीं है, प्रसन्द्राचार्य महाराज को
हाँ
भाव क्योंकि वह तो जीव अनुभूति वाला नहीं है, इसलिए भाव शुरू किया है। क्या है पर्याय उसको नहीं कह करके आत्मा क्यों कहते हैं, ज्ञान जिसको हुआ उसको शुद्ध उपयोग हुआ उसको शुद्धात्मा कहा या भी आत्मा कहा, पर्याय को क्यों आत्मा कहते हैं। ये ग्रंथ तो द्रव दृष्टि का है, द्रव दृष्टि कराने के हेतु से है, लेकिन पर्याय को आत्मा जगह जगह क्यों कहते हैं। दूसरी गाथा से लेकर के 15 गाथा ले लो, वहां बहुत सबूत है, हमारी तो इतनी स्तुति शेर नहीं है कि कितनी गाथा बताएं आपको, लेकिन जगह जगह पे 203 से लेकर के निर्जला अधिकार 206 का फल मेरी कि ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है। या तो प्रतीति करता है वो ज्ञान आत्मा है, अनुचरण करता है वो ज्ञान आत्मा है, सबको ज्ञान ही कहते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा ज्ञान मात्र, ये समय सार सारा समय सार ज्ञान मात्र में कर दिया। तो इसका एक स्पष्टीकरण वो है कि जब पदार्थ के बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस जिसको कहते हैं, पदार्थ के बंधारण को जब नहीं समझ सकते हैं तो बंधारण को समझाने के लिए द्रव्य पर्याय उत्पाद में ध्रुव द्रव क्षेत्र का भाव इसको भेद को समझना आवश्यक। जब पदार्थ विज्ञान को अच्छी तरह हम समझ लें तब फिर अध्यात्म के प्रकरण में इस भेद को संक्षेप करके अभेद अनुभव करने से ही अध्यात्म अनुभव होता है, अध्यात्म तत्व का अनुभव होता है और उस अनुभव को भी अध्यात्म कहते हैं। कोई चीज अध्यात्म के विषय में है, एक अपना त्रिकाली शुद्धात्मा है परमात्मा है, वही अध्यात्म तत्व है जो अवलंबन के योग्य होने से अभी मैंने आधार लेना, और इसके आधार लेने वाली जो भी शुद्ध पर्याय है चाहे ज्ञान के दर्शन के चारित्र के अनंत गुण के उसको भी अध्यात्म कहते हैं। बस बाकी के सब विषय आगम के विभाग में जाता है, अध्यात्म में नहीं आता। तो जो विभाग है उसको समझ लेना। तो अध्यात्म के प्रकरण में ये द्रव्यों पर्याय वाला जो आगम का विषय है वहां उसका लेवल नहीं है, आगम जिस लेवल पर बात करते हैं उस लेवल पर अध्यात्म बात नहीं चलती है। अध्यात्म में आगम की अपेक्षा कभी नहीं घुसाना, आगम में अध्यात्म के लिए घुसाना, दोनों का लेवल अलग अलग है। एक ट्रेन पटरी पर चलती है, एक प्लेन हवाई जहाज जो है हवा में चलता है, दोनों का लेवल ही अलग है। जहां तक इस बात को नहीं समझेंगे तो एक दूसरे में हम हमारे जो धारणा है इसलिए एक विषय में दूसरा विषय हम लगा देंगे फिर हमको समाधान नहीं होगा। कि यहाँ पर्याय तो आत्मा क्यों कहा है, जैसा आपको प्रश्न हुआ कि राग और ज्ञान तो पर्याय और ये टीकाकार आचार्य और वस्तु से चालू करते हैं ऐसा था। ये भी प्रकरण अध्यात्म का चलता है, संवर है वो शुद्ध पर्याय है, वो अध्यात्म का प्रकरण चलता है। अध्यात्म के प्रकरण में द्रव्य गुण पर्याय का भेद वो निवारण हो जाता है, यानी एबोलिश हो जाता है, तो रहता नहीं तभी अध्यात्म पैदा होता है। इसका लेवल ही ऐसा ही है। इस विषय में और कई बातें हैं तो करने का अभी समय नहीं है।
इसमें प्रदेश देश की बात आती है, ज्ञान के अंतर में प्रदेश देश है और इसमें प्रदेश देश की बात समझनी है।
हाँ हाँ आएगी बराबर, हम बांगे इसको, हम उतना खोलेंगे उतना खोलेंगे।
प्रदेश देश
जितना भी प्रश्न है हम तो भी लिख के भी लाना, हम सबका खुलासा करेंगे। उस पर हमने काफी अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया है। तो क्या है कि कितनी कितनी बातें हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि इसमें भेद अभेद में कैसे लेना है, अध्यात्म के प्रकरण में अभेदता क्यों लेनी है, कैसे लेनी है और कहाँ से ये शुरू होता है अध्यात्म, इसके थोड़े और स्पष्टीकरण करके फिर तो इस गाथा को पकड़ करके ही आगे चलेंगे। इसमें जो हमारा स्पष्टीकरण है इसके अनुसार आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। तो आज का जो समय समाप्त हो गया।